हे सीतापते, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप कारुणिक हो। हे रावण के शत्रु, मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं, इस भवसागर से हमको पार कर दीजिए प्रभु, पार कर दीजिए। भक्तवत्सल भगवान विभीषण की स्तुति सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, विभीषण वरम वृणीश्व, कोई वरदान मांगो हमसे, वरदान मांगो, जो तुम्हारे मन में मांगना है सो मांग लो। विभीषण कह रहे, महाराज धन्य हो गया, आपने मुझे वरदान मांगने के लिए कह दिया, मैं तो कृतकृत्य हो गया। मैं क्या मांगू महाराज? देखो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कितना स्पष्ट कहलवाया, उर कछु प्रथम वासना रहे, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो भई। आपके चरणों के अंदर जो प्रेम की नदी बही ना, उसमें मेरी इच्छा रूपी जो तिनका थी वो तिनका बह गया है। उर कछु प्रथम वासना रहे, पहले तो मेरे मन में बहुत वासना थी, कुछ वासना थी लंका का राजा बनो। आप में प्रेरित क्या पड़ा है लंका के राज्य में, वो रावण बैठा लंका का राजा बना हुआ। तो तत्पाद दर्शनादेव, मैं आपके चरणों के दर्शन करने से मुक्त हो गया महाराज। मेरे जैसा इस संसार में कोई भाग्यशाली नहीं है। सज्जनों, आदमी अहंकार करता है कि मैं बड़ा धनी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा ऊंचे पद पर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जाने क्या अहंकार होता है। विभीषण जी कहते हैं, अहंकार तो एक ही बात का करो, मेरे पर भगवान की असीम कृपा है। सज्जनों, जो आदमी जितनी अपने पर भगवान की कृपा मानेगा, वो वास्तव में कृपा उसके ऊपर बरसने लग जाएगी भगवान की। भगवान की कृपा कोई मामूली बात नहीं होती। विभीषण कहते हैं, मैं तो धन्य हो गया, इतनी कृपा है आपकी मेरे पर। यदि आपने मुझे ये कहा है कि कुछ मांगो, तो महाराज मैं तो यही मानता हूं कि कर्म करते हुए कर्मों का बंधन न लागू हो, ऐसा तो आप ज्ञान दे दो, और आपके चरणों में प्रीति हो ऐसी भक्ति दे दो, और जरा सी आंख बंद करते ही आपका ध्यान लगे, और आंख खोलते ही जिसका मैं ध्यान करता हूं वही उसी की मूर्ति सबके अंदर दिखाई दे। देखो ये कांच होता है तो कांच सबको अच्छा लगता है कि ये कांच है, क्योंकि इसमें अपनी मूर्ति दिखाई देती है, अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर भगवान का चेहरा दिखाई दे, हर प्राणी के अंदर आपका रूप दिखाई दे, ऐसी आप कृपा कर दो, और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। ये विषय सुख तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं महाराज, क्योंकि इससे तो आपकी भक्ति में बाधा ही आती है, और मैं कुछ नहीं चाहता। भगवान कहते हैं, ठीक है विभीषण, थोड़े मेरे से रहस्य की बात सुनो। भक्ति भी मांगी है, ज्ञान भी मांगा है, और ध्यान भी मांगा है, लेकिन ये देखो कि मैं कहां, किस समय कहां, कैसे रहता हूं। देखो जो व्यक्ति अपने हृदय में शांति को रखता है, हर बात को कर, हर काम को करने से पहले ही समझता है कि कुछ भी हो जाए मेरे अंदर की शांति को भंग नहीं करना है, ऐसा मन में विचार करके और वो काम करता है। जैसे धनी आदमी समझता है कि मेरा कुछ भी काम हो, मूल पूंजी मेरी खत्म नहीं होनी चाहिए, फिर जो है कोई पैसा आता है जाता है, कम आए ज्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मूल पूंजी मेरी नहीं टूटनी चाहिए। ऐसे ही वृक्ष की जो जड़ होती है, जड़ यदि जमीन के अंदर है तो वृक्ष के पत्ते यदि सब झड़ भी गए तो भी कोई हर्जा नहीं, खूब हरा हो गया तो भी कोई हर्ष की बात नहीं, जड़ है वो जमीन में रहती है। ऐसे ही अंदर जिनके शांति रहती है, छोटी छोटी बातों से जिनके उलझन पैदा नहीं होती कि साहब क्या करें, हमारा तो ये हो गया, हमारे तो घर में कोई मर गया, हमारा तो धन चला गया, हमारा ये हो गया, हमारे ये हो गया, ऐसे करके जिनके थोड़ी थोड़ी देर में अशांतियां पैदा होती रहती है, उनके अंदर मेरी भक्ति पैदा हो ही नहीं सकती। मेरी भक्ति को यदि प्राप्त करना हो तो अंतःकरण में शांति रखो। कहते शांति को भी कैसे रखें कि भाई शांति रखने के लिए तो यही सोचना चाहिए शांति से अंतिम लाभ तो मेरे को ही होने वाला है। शांति के अभाव में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, अपने को ही होगी। तो अपने ही लाभ की बात आदमी नहीं सोचे तो फिर क्या सोचेगा भाई, ये अपने लाभ की बात है, अपनी शांति अपने को लाभान्वित करने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति होता है उस वह मैं उसके हृदय में सीता जी के साथ निवास करता हूं, इसलिए सर्वदा शांत है, सदा शांति बनाए रखो अपने अंतःकरण में। और फिर शांति के बाद फिर जो है तुम मेरा ध्यान करो। लोग कहते हैं हम भगवान का ध्यान करते हैं मन नहीं लगता, कि मन में शांति है कि अशांति है, तो अशांति, अब अशांति से शांत भगवान का ध्यान कैसे कर पाओगे। एक आदमी कहता है कि साहब क्या करें, ये जो है फल है इस फल के अंदर मिठास नहीं आ रहा है, आम का रस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई, आम का सब मिठास नहीं, क्यों? वो क्या करे, मैं तो तुम्बा खा रहा हूं। अब तुम्बा खाएगा तो भाई तेरे को आम का स्वाद कैसे मिलेगा। ऐसे ही शांत मन से तो मेरा ध्यान करते नहीं, मन में तो संसार भरा पड़ा है और मेरा ध्यान का आनंद लेना चाहता है, नहीं वो कभी किसी प्रकार से शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। अंतःकरण में शांति रखने के बाद यदि वो मेरा ध्यान करता है तो घोर संसार से उसकी मुक्ति हो जाती है। तुमने जो स्तोत्र गाया है मैं उस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। लक्ष्मण कहा महाराज देखो भाई सब बंदरों के बीच में मैं इसका लंका का राज्याभिषेक करना चाहता हूं, लाओ जल लाओ। तो जल लाया गया, जल ला करके और उसका राज्याभिषेक करते हुए भगवान कहते हैं सुनो सुनो विभीषण, यावत् चंद्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी, जब तक पृथ्वी है सूर्य है चांद है और जब तक संसार में मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारा लंका में राज्य बना रहेगा, ये हम तुमको जो है अभिषेक के साथ में दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। तो ऐसा कर दिया, फिर उनको कलश लाए, स्नान करवाया, राज तिलक कर दिया और सब बड़े आनंद से रहे। इतने में ही सुग्रीव उछल करके आए, आओ लंका नरेश विभीषण आओ आओ, छाती से लगो, छाती से लगाया और कहने लगे, सुग्रीव जी कहने लगे कि हे विभीषण अब आज से आप भगवान के किंकर हो गए, हमारे ही समान आप भी इनके दास हो गए हैं, आपको हमारे रावण के विनाश रूपी कार्य में पूरा सहयोग करना पड़ेगा। रावण से क्या कह के आए थे विभीषण जी कि राम के हाथों तुम्हारा विनाश मैं देखना नहीं चाहता हूं, मैं तो नहीं देखना चाहता हूं लेकिन तुम्हारा होता है उसका मैं क्या करूं। और सुग्रीव जी ने आते ही कहा कि रावण के विनाश के लिए प्रयत्न करो, रावणस्य विनाशे तुम सहायम कर्तुम अर्हसि। तो विभीषण कहते हैं कि ठीक है रावण के विनाश के लिए मैं क्या राम जी की क्या सहायता कर सकता हूं, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मैं तो इनका दास हूं, ये तो मुझे जैसा कहे वैसा कर सकता हूं। निष्कपट भाव से अपनी जैसी शक्ति है जैसी भक्ति है उसके अनुसार इनकी आज्ञा का पालन कर सकता हूं, परंतु इनकी सहायता करूं, सहायता करने तो यह है कि इनके पास किसी चीज की कमी है उस कमी को मैं पूरा करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं इनका सेवक हूं, जैसी मुझे आज्ञा देंगे वैसा करेंगे। यह एक यहां पर विभीषण जी की शरणागति पूरी हुई। सुनो पार्वती, इधर से दूसरी कथा प्रारंभ होती है। रावण ने शुक नाम के एक असुर को आकाश मार्ग से भेज करके और सुग्रीव के पास कुछ संदेश दिलवाया था। वो शुक आकार आकाश मार्ग से आया था तो असुर, और असुर था वो जो है तोते का रूप बनाकर आया, तोते का रूप बना करके और सुग्रीव के पास आकर के बोलता है, हे सुग्रीव आपको लंका नरेश रावण ने एक अपने हृदय की गुप्त बात पहुंचाने के लिए मुझे आदेश दिया है। रावण ने कहा है कि सुग्रीव, तुम हमारे भाई हो, बहुत ऊंचे कुल में तुम पैदा हुए हो। लंका का और किष्किंधा का तो सदा से ही प्रेम रहा है। हम राक्षस राक्षस हैं, तुम बानर वानर हो। राक्षसों के और बानरों के तो कभी लड़ाई आपस में हुई नहीं है। यदि मैंने भार्या का हरण किया है तो राजपुत्र की भार्या का हरण किया है, एक राजा के पुत्र की राजकुमार की स्त्री का हरण किया है। सुग्रीव, तुम्हारी स्त्री का हरण नहीं किया, फिर तुम क्यों इस युद्ध के अंदर सहायता करने के लिए आए? तुम्हारा हमारा क्या बैर है बताओ? मैंने तुम्हारी स्त्री का तो हरण किया नहीं, तुम ऐसा करो, अपने सेना सहित चुपचाप किष्किंधा की ओर प्रस्थान करो, और इसके लिए आपको जो चाहिए वो आप मुझे बोल दीजिए, वो सब खजाना आपके पास पहुंचा देता हूं। आप राम को साफ कह दो कि राम, मैं अब आप समुद्र तक आपकी सहायता करने आ गया, इतना बहुत है, अब मैं मरने के लिए वहां लंका में नहीं जाऊंगा। ये आपकी और रावण की आपस की लड़ाई है, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, तुम वापस लौट जाओ। किष्किंधाम व्याई हरिवीर लंका शक्यान दैवतई। मैं तो तुमको ये भी बता रहा हूं कि लंका को तो देवता लोग भी देख नहीं सकते हैं, तुम यहां आकर के बिना मतलब मारे जाओगे, अतएव अच्छी से अच्छी बात यह है कि तुम चले जाओ और अपना किष्किंधा का राज्य करो। बेचारे छोटे छोटे ये बानर, इनको देखकर मुझे बहुत दया आती है, उस दया के कारण से मैंने जो है तुमको ये संदेश दिया है, तुम अपने बंदरों को ले आओ, मेरे बहुत भारी भरकम राक्षस इन बंदरों को खा जाएंगे। उसी समय में कई बंदर ये बात सुनकर के उसको सुख को मारने के लिए आकाश में उड़े, पकड़ो इसको, पकड़ो, मारो इसको, ऐसे कूदे। चार पांच बंदर गए, उसको उड़ने भी नहीं दिया, चारों तरफ से घेर के उसको पकड़ लिया, पकड़ करके और उसको मारने लगे बुरी तरह से। सुख जोर से चिल्लाया, हे राम देखो इन बंदरों को मना करो, ये मुझे मारते हैं, दूतों को मारा नहीं जाता है। राम जी ने यह बात सुनकर के बंदरों से कहा, बंदरों ठहरो ठहरो, ये क्या करते हो? दूत तो अपन ने भी भेजा था, लेकिन वो मार खा के नहीं आया। कि महाराज, वो तो मार खा के फिर भी नहीं आ सकता, लेकिन इस दूत को अपने आंखों के सामने ये हमारे से अभय चाह रहा है ना, इसलिए अब इसको मत मारिए, मां वधिष्ठ मारो मत, इसको तुम पकड़ लो, छोड़ो भी मत, समय आने पर छोड़ना, अभी मत छोड़ना, पकड़े रखो इसको, कैद खाने में रख लिया, कैद में रख लिया, कैद खाना तो क्या था, बंदरों के कैद में रहा वो। सुख कहने लगा, हे सुग्रीव, आपने क्या निर्णय किया है? देखिए ना, मुझे पकड़ने के लिए कोई नहीं आया है, आपके बंदर ही आए हैं। राम लक्ष्मण दोनों ही नहीं आए, बंदर आए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, रावण को मुझे क्या संदेश देना है? किम वक्ष्यामि ब्रजाम्यहम्, मैं आगे जाना चाहता हूं। सुग्रीव ने कहा, सुनो सुख, तुमने जो हमसे पहली पहली बात कही ना कि सुग्रीव तुम हमारे भाई हो, ये रावण ने कहा है, तो मैंने मेरे भाई के साथ जो बर्ताव किया वैसा ही तो बर्ताव मैं रावण के साथ करूंगा ना। मेरे भाई के साथ क्या किया वही बर्ताव इसके साथ करूंगा। यथा बाली मम भ्राता, जैसे मेरा बाली भाई है, तथा त्वम, ऐसे तुम ही मेरे भाई हो। बाली को मैंने मारा तो तुम भी मारे जाओगे। हां इतना है, थोड़ी बहुत ये बात कर सकता हूं कि बाली के कुटुंब को नहीं मारा, और तुम यदि हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा विशेष काम ये करूंगा कि तुम्हारे भाई बंधु कुटुंब है जाति सबको मारूंगा, इतना काम तो कर सकता हूं। लेकिन किष्कंधा जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। ब्रूही में रामचंद्र से भार्याम हृत्वा क्वयास्यसि, प्रश्न तो मेरा है रावण, बोल देना उसको, प्रश्न तो मेरा है कि सीता का हरण करने के बाद तुम जाओगे कहां, कौन सी ठोर है तुम्हारे बचने की, इस बात का मुझे उत्तर चाहिए। शुक ने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं जाकर कहूं। राम जी ने कहा छोड़ेंगे तो नहीं, अभी छोड़ेंगे पर अभी नहीं छोड़ेंगे, इसकी चारों तरफ से रक्षा की जाए, इसको अभी जाने नहीं दिया जाए। इधर क्या हुआ कि इससे पहले शार्दूल नाम का एक राक्षस था, उसको भी रावण ने भेजा था। वो शार्दूल जाकर के और रावण को सब बात बोला है कि ऐसे ऐसे वहां पर विभीषण गया है, ऐसे ऐसे ये गया है, सब बात उसने सुना दी। इधर राम जी महाराज बड़े चिंतित हो रहे हैं कि अब समुद्र को कैसे पार करें। राम जी ने कहा देख लक्ष्मण, हम इतने दिन से यहां समुद्र के यहां आए, समुद्र हमारी कोई कठिनाई समझ ही नहीं रहे हैं। आखिर समुद्र के पास हमने आकर के यहां दो जनों को शरण दिया है, विभीषण को शरण दिया है, सुख के प्राण बचाए हैं, तो हम भी तो समुद्र की शरण में ही आए। यहां समुद्र को कोई दया ही नहीं आई, समुद्र कुछ विचार ही नहीं करता है, और समुद्र जो है वो हमारा अभिनंदन भी नहीं करता है। देखते हैं देखें समुद्र क्या करता है। ये देखता है कि ये तो सामान्य मनुष्य है, ये हमारा क्या करेगा, ये बंदर है, बंदरों के साथ में तो है, बंदर हमारे क्या करेंगे, इनके साथ में पृथ्वी के अनगणित राजाओं में कोई राजा साथ में नहीं, कोई राजा साथ में नहीं, कोई इनके साथ ही बंदरों को लेकर के आ गया, हमको मामूली समझ रखा है। अब देखता हूं देखें समुद्र के अंदर कितना बल है, लाओ मेरा धनुष लाओ। अद्य पश्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिम, आज समुद्र को मैं सुखा दूंगा। समुद्र के सुख जाने के बाद बंदर उछलते कूदते मार्ग बनाकर अपने आप लंका पहुंच जाएंगे, पैदल पैदल चले जाएंगे। लाओ मेरा धनुष लाओ। धनुष ला के दिया और धनुष के ऊपर यूं बाण डोरी चढ़ा करके टंकार किया, बाण रख करके यूं कान तक खींचा, और भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को सावधान करते हुए कहा हे प्राणियों सुन लेना, जितने पशु पक्षी नभचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, सब सुन लेना, और सुन लेना नहीं आज सब देख भी लेना कि राम के एक बाण में कितनी करामात है। मैं अब इस समुद्र को भस्म करने जा रहा हूं। हे नदियों तुम भी सावधानी से सुन लेना, अब समुद्र को यदि मैं सुखाता हूं तो किसी प्रकार से किसी को कोई विचार नहीं करना है, क्योंकि इतने दिन हो गए समुद्र हमारी परवाह नहीं करता है। ऐसे करके कान तक खींचे बाण को, धनुष की डोरी को, तो ये पृथ्वी एक कांपने लग गई, भूकंप मच गया, दिशाओं में अंधकार छा गया, अब सागर भी यूं यूं होने लग गया भगवान के कोप से। भयाद योजनम अत्यगात, भय से एक एक योजन आगे बढ़ गया। ये समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है, पर आज तो भय यूं यूं हो गया, चार कोस यूं, अरे चार सूत समुद्र आगे नहीं बढ़ता है। ज्वार भाटा आता है वो अलग है, लेकिन मर्यादा जो बनी हुई है ना उस मर्यादा से नहीं बढ़े। समुद्र के किनारे किधर कितने बड़े बड़े शहर है, यूं यूं ऐसे होने लगा। समुद्र भी भूकंप आया, तब तिमि नक्र जसा मीना प्रतपता, और राम के क्रोध से मगरमच्छ वगैरह सब जलने खोलने लगे। ऐसे इतने में ही समुद्र के अंदर समुद्र स्वयं साक्षात दिव्य रूप धारण करके और दिव्य वस्त्र पहना हुआ, दिव्य आभूषण पहना हुआ, बड़े और चमकीला चमकीला वो अंदर से प्रकट हुआ। महाराज महाराज बचाइए 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 महाराज, ठहरिए ठहरिए। भगवान ने अपना धनुष एक बार बाण अपना धनुष उसको रोक लिया, बाण को रोक लिया, ये उसको देखने लगे। वो आया आकर के भगवान के चरणों में गिर गया कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, त्राही माम संपूर्ण त्रिलोकी को आप अभेदान दिए वे मुझे अभेदान दीजिए महाराज, मैं जड़ हूं, जड़ हूं माने मैं मूर्ख हूं। देखो जल बोलो जड़ बोलो, इसने कहा कि मैं जड़ हूं और आप ही ने सारे संसार को बनाया है तो मुझे भी तो आप ही ने बनाया है। अब हम तो वैसे ही जड़ हैं, जितनी प्रकृति की चीजें हैं सब जड़ हैं, हमारे अंदर कोई ज्ञान तो है नहीं। अब हम लोग अज्ञान में पड़े हुए, ज्ञान का अभाव है हमारे अंदर, तो हमारा जैसा स्वभाव है वैसा ही करेंगे। स्वभावम अन्यथा कर्तुम कह सकते हैं, अपने स्वभाव से बाहर कौन जाएगा महाराज। ये पांच महाभूत जड़ है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है, ये पांचों भूतों महाराज ये जड़ है, तो जड़ान्य स्वभाव होता है, इसलिए ये जड़ बने हुए हैं तो आपने इनको ऐसा ही बनाया है, तो ये जड़ होने के नाते ज्ञान की सीमा में आएंगे कैसे, ये आपकी आज्ञा का कैसे उल्लंघन करेंगे। और तामस अहंकार से ये सब चीजें बनी है पांच महाभूत, अतएव ये और भी इनमें जड़त्व तो समा गया। आप निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन हैं और माया के द्वारा गुणों को स्वीकार करते हैं तब आप वैराज होते हैं, वैराज विराट विराट का जो अब खास स्वरूप वो वैराज, वैराज माने विराटता को लिया हुआ। आप ही प्रकृति के तत्वों के साथ मिलकर के आप ही विराट बनते, नहीं तो आप एक अकेले ही थे, संसार बनकर के ये आपका विराट रूप हो गया। आप ही ने सत्व अंश से देवताओं को बनाया, रजोगुण से प्रजापतियों को बनाया और तमोगुण से आपने जो है सब जो है ये पांचों महाभूत बनाए, राक्षस बनाए और तरह तरह की पैशाचिक योनियां बनाई। अब उनके अंदर महाराज मैं भी एक आपकी माया में ढका हुआ, मैं आपको क्या जानूं, माया से बना हुआ, कथम जानामि, आप माया से अतीत हो, आपको जानने का मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, और मूर्खों को दंड देना तो आपका काम है महाराज। तो आप जैसे कोई पशुओं को डंडा दिखाते हैं तो पशु रास्ते पर आ जाते हैं, तो आप महाराज मैं शरण में आया हुआ हूं, मेरी रक्षा कीजिए, आप भक्तवत्सल हो, मुझे अभयदान दीजिए, मैं आपको लंका का मार्ग बता देता हूं। ये सुनते ही राम जी ने बिल्कुल उपालंब नहीं दिया समुद्र को, कहा भाई समुद्र शरण में ही आ गए तो क्या करें। कहने लगे देखो समुद्र, ये जो मेरा बाण है ये अमोघ है, अमोघ कभी भी व्यर्थ जाता नहीं, एक बार जब धनुष पर चढ़ा लिया तो अब इसको तो मैं वापिस तूणीर में नहीं डाल सकता। अब बताओ किस देश में इस बाण को छोड़ू, लक्षम दर्श है, क्योंकि इस बाण का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, निरुपयोगी बाण तो मेरे से छूटता ही नहीं है। तो पूछा कि महाराज जी बात क्या है, बात ऐसी है कि श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे जैसे अपनी वाणी को निरुपयोगी बातों में खर्च नहीं करते, ऐसे ही श्रेष्ठ योद्धा होते हैं वो बाण को निरुपयोगी क्षेत्र में नहीं चलाते हैं, इसका कोई न कोई उपयोग होना चाहिए। तो कहा कि महाराज उत्तर दिशा में एक द्रुमकुल्य नाम की जगह है, वो द्रुमकुल्य नाम का एक देश है, वहां पर बहुत पापी रहते हैं, उन पापियों के नाश के लिए आप इस बाण का उपयोग कर लीजिए। तब और वो हमको बहुत कष्ट देता है, या समुद्र को ही कष्ट देता है। तब भगवान ने वो बाण उधर छोड़ा और फिर उसके बाद सागर ने बड़े नम्रता से निवेदन किया कि महाराज, आपके यहां सेना के अंदर नल नाम का एक वानर है, ये विश्वकर्मा का पुत्र है। विश्वकर्मा का पुत्र होने के नाते इसको विश्वकर्मा की कला जन्मजात मिली हुई है। विश्वकर्मा निर्माण के अंदर बड़े प्रवीण है और ये उनका पुत्र है। ये जल के ऊपर बहुत सुंदर पुल बना सकता है, इसकी बुद्धि बहुत काम करती है। जब ये पुल बना देगा आपकी कृपा से, तो युग युगांतरों तक आपकी कीर्ति फैली रहेगी और उस कीर्ति के द्वारा लोगों का सब पाप दूर हो जाएगा। इसलिए आप पुल बनाने के अंदर नल को आज्ञा दे दीजिए। इतना कहकर के वो सिंधु वहां से चला गया। और ततो रामस्तु सुग्रीव लक्ष्मणाभ्याम समन्वित है। अब उसके बाद राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सुग्रीव और लक्ष्मण को साथ में लिए, नल को आज्ञा दिए, नल आओ भाई, नल आओ। तो उस समय में कई कई बड़े बड़े अच्छे अच्छे बंदरों को भी आज्ञा दी। नल ने कहा कि महाराज, समुद्र का समुद्र के ऊपर पुल बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की आवश्यकता होगी और कई हमको डोरियों की आवश्यकता होगी, वृक्षों की आवश्यकता होगी। तो सब बंदरों को सब दिशाओं में भेज दिया गया कि जाओ भाई, पत्थर ले लेकर के आओ। देखो, आंध्र प्रदेश में कई जगह ऐसे हैं, हैदराबाद के आसपास हो रहे बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर, इस स्टेज से भी बड़े बड़े पत्थर यूं ऐसे सुंदर रखे हुए, यूं रखे हुए। कहते हैं कि उस समय ये बंदर लोग पत्थर लेके उड़ रहे थे, उस समय में आवाज आई, बेटे अब हमारा पुल बन गया, जो जहां है वहीं से ही आ जाओ। तो जय रख दिया, यूं रख दिया। उन पत्थरों को किसी ने हिलाया नहीं, हिले भी नहीं वो। लोग कहते हैं कि ऐसे पत्थर कौन जचा सकता है। अब ये क्राम भी वहां नहीं जा सकती, पहाड़ों के ऊपर कहां क्राम जाए। वो बस उस समय के रखे हुए पत्थर अभी तक भी हैं। अस्तु, इधर जब सेतु का निर्माण किया जाने लगा, सामग्री आई, सेतु का निर्माण किया जाने लगा, उस समय में भगवान ने सबसे पहले शंकर जी की पूजा की और वही फिर रामेश्वरम नाम हुआ, रामेश्वरम। देखो, रामेश्वरम का अर्थ भगवान शंकर से पूछा जाने लगा कि महाराज, रामेश्वरम का अर्थ क्या है। तो शंकर भगवान ने कहा, देखो पहले राम जी से पूछ के आओ कि रामेश्वरम का अर्थ क्या है। तो राम जी से पूछे, तो राम जी से पूछा, महाराज रामेश्वरम का क्या अर्थ है। अरे सीधा सीधा अर्थ है, रामस्य ईश्वर है, रामेश्वर है। जो राम का ईश्वर हो, जो राम का मालिक हो, वो रामेश्वर है। तो शंकर जी के पास गए, महाराज राम जी ने तो कहा है कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। शंकर जी ने कहा, देखो भाई, हम भगवान की बात को आज काटेंगे, इतने दिन तक तो हम काटते नहीं थे भगवान की बात, आज हम भगवान की बात काटेंगे और काट करके और कहेंगे कि रामेश्वरम का अर्थ ये नहीं है। रामेश्वरम का तो हम अर्थ बताए, वो क्या, राम है ईश्वर जिसका, राम है ईश्वर जिसका। तो मेरा ईश्वर तो राम है, तो रामेश्वर मेरा नाम है। भगवान शंकर ने, भगवान राम जी ने कहा कि राम का ईश्वर, राम का ईश्वर भगवान शंकर। तो कहते हैं कि राम है ईश्वर जिसका, वो शंकर। राम से ईश्वर नहीं, राम है ईश्वर हो यस्य। तो दोनों ही बातें से बड़े खुश हुए। राम जी महाराज ने कहा, देखो ये रामेश्वर भगवान शंकर हैं, इनकी आज मैं संसार में स्थापना करता हूं, लोक हित के लिए करता हूं। जो व्यक्ति रामेश्वरम में आएंगे और सेतुबंद को प्रणाम करेंगे, उसके जीवन में जो भी पाप हुए हैं, ब्रह्म हत्यादि जैसे पाप भी सब प्रकार से मेरी कृपा से मुक्त हो जाएंगे। देखो, मदनुग्रहात, कई कई बार लोग कहते हैं कि इस कथा के सुनने से ये पाप नष्ट होता है, बात क्या है, ऐसे कैसे हो जाए, हम तो रोज कथा सुनते हैं, क्या हमारे पाप नष्ट हो गए, क्या नष्ट हो जाएंगे, क्या अब नहीं होंगे, क्यों आपने संदेह क्यों किया, कथा तो श्रद्धा के साथ सुनी जाती है, क्या नहीं हम संदेह नहीं, हम तो पूरी क्या कारण क्या है, कैसे नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं मद अनुग्रह, भगवान कहते ना मेरी कृपा से हो जाएंगे। अब ये छोटा सा बच्चा है, ये हवाई जहाज में कैसे चला गया, इतना सा बच्चा है हवाई जहाज में चला, कैसे चला गया ऐसा हवाई जहाज से, एक दो घंटे के अंदर ये कलकत्ता से उड़कर दिल्ली कैसे चला गया, ये बच्चा कैसे कैसे चला गया, अरे माँ बाप की गोद में था, माँ बाप की गोद में है, अब बताओ बच्चा हवाई जहाज कैसे, टिकट लाना कैसे करना, बच्चों क्या मतलब है, ऐसे ही मालूम ये देता है कि माता पिता ने ही सब व्यवस्था की, उन गोद में जैसे घर में रहा ऐसे माँ की गोद में वो जो है यहां भी रहा, तो हवाई जहाज से पहुंच गया। ऐसे ही जितनी कथाओं के बारे में और के बारे में आता ना कि ऐसे करने से ऐसा होता है, क्यों होता है, उसके अंदर भगवान की कृपा छिपी रहती है, कृपा से होता है। तो रामेश्वरम के अंदर जाने से, प्रणाम करने से पापों से छुटकारा क्यों मिलता है, कि मद अनुग्रह मेरी कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से क्या नहीं हो जाए भाई, कि हाँ भगवान की कृपा से तो हो जाता है। तो ये आप कहीं कथा सुनो और सुनो कि साहब ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, उसके अंदर अविश्वास नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई हमने सुना तो है लेकिन हमारे तो पाप नष्ट नहीं हुए, तो भाई वास्तव में वो बड़ी भारी गलती करते हैं, नष्ट नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे वो, ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए, उल्टी धारणा। यदि नहीं होने वाली बात होती तो क्यों ये बताओ हमारे ऋषि मुनि लिखते, क्यों भगवान शंकर कहते और भगवान राम के मुख से कहलवाते, भगवान राम के मुख से कहलवाना कि भाई मेरी कृपा से पाप मुक्त तो हो जाओगे, झूठा क्यों कहलवाएंगे, झूठा कहलेंगे तो राम जी का अपराध करेंगे वो, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। तो जो लिखा हुआ है ना कि इस चीज का ये फल है, वो बिल्कुल सत्य बात है, उसमें अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। भगवान राम बोलते हैं कि सेतु बंध के अंदर जो व्यक्ति आएगा और रामेश्वर भगवान के दर्शन करेगा और फिर जो है अपने संकल्प को अपने मन में रखेगा, फिर बनारस जाएगा और बनारस जाकर वहां से गंगाजल लाएगा और उस गंगाजल को लाकर के रामेश्वरम के अंदर उसका अभिषेक करेगा, वह व्यक्ति साक्षात परब्रह्म परमात्मा को निस्संदेह रूप से प्राप्त होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। समुद्रे क्षिप्त तद्भारो ब्रह्म प्राप्नोत्य संशयम्। तो वो जिस जल से वो लाया है गंगा जल बनारस से, उस पात्र को भी वो समुद्र के अंदर ही डाल दे, बस ऐसी बात भगवान बोलते हैं। अब जब रामेश्वर की स्थापना हो गई, अब जो है वहां पर पुल बनाने लगे। देखो एक नेता ने कहा कि ये पुल उल भगवान राम के समय के बनाए हुआ, हम नहीं मानते, इसकी फाइल लेकर के आओ, कोई कागज मिलेगा लाखों वर्षों का कि हम फाइल लेकर के आएंगे साहब, हमारे पास फाइल है, क्या एक दिन में कितना बना, दूसरे दिन कितना बना, तीसरे दिन कितना बना, चौथे दिन, ये देखो अध्यात्म रामायण हमारी फाइल है, फाइल इसमें साफ लिखा हुआ है। और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि पहले दिन कितना बना, बिल्कुल ठीक है, कहले पहले दिन 14 योजन पुल बनाया, जोड़ते जाना, पहले दिन 14, दूसरे दिन 20 योजन पुल बनाया, तीसरे दिन 21 योजन बनाया और चौथे दिन 22 योजन बनाया, पांचवें दिन 23 योजन बनाया, कितना हो गया 100 हो गया, 14 और 20 34 और 21 55 और 22 77 और 23 100 हो गए, 100 योजन पुल बनाया, ये हमारी फाइल बोलती है साहब, ये हमारी फाइल है, ये प्रमाण है हमारे शास्त्रों का लिखा हुआ। तेने ही वह जगमु कपय है। देखो हमारे व्यास जी महाराज कितना जल्दी सबको पहुंचाते हैं, बस जब पुल बन गया सब बड़े प्रेम से उस पुल से पार होते 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 जा जा करके लंका के वहां जाकर विराजमान हो गए। और कोई लंका के पर्वत पर चढ़ गया, तो कोई लंका के वृक्षों पर चढ़ गया, और कोई कहां कोई कहां, चारों तरफ लंका के अंदर बंदरों की सेना पहुंच गई। अब आगे की कथा है वो मध्यम विश्राम के बाद कहेंगे। देखो मध्यम विश्राम करते ही कथा का कुछ नया सा हिस्सा आएगा हो, इसलिए आप मध्यम विश्राम के अंदर समय पूरा होते ही जल्दी आकर के आप बैठ जाए। राम 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 राम।